पृष्ठ संख्या 30, अध्याय 3, असहयोग आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने शोषण, अन्याय एवं रंगभेद की नीति से उत्पन्न सार्वजनिक ढोंग के विरुद्ध जो सत्याग्रह आंदोलन किया, उसमें उन्हें अपार सफलता मिली और उससे उनकी ख्याति भी बढ़ी। जनवरी 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन दिनों गांधी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पक्के राजभक्त थे। रनाडे तथा गोखले जैसे अपने राजनीतिक नरमदली उदारवादी अंग्रेजों की भांति वह भी ब्रिटिश संस्कृति व परंपराओं के महान प्रशंसक थे तथा अंग्रेजों के भारत के साथ संबंधों को भारत के लिए लाभप्रद मानते थे। 1915 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यही आश्रम बाद में साबरमती आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की सत्याग्रह की रणनीति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा के माध्यम से गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध उनके अहिंसक विद्रोह में भी उनकी गहरी नैतिक भावना निहित थी। उनके नेतृत्व में राष्ट्र एक विराट पुरुष की भांति अपने चिर निद्रा त्याग कर संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ। उनकी अभूतपूर्व सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका जनता के साथ एकाकार हो जाना था। गांधी के हृदय में नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा के साथ ही राजनीतिक स्वतंत्रता की उत्कृष्ट कामना भी थी। वे भारत के स्वराज की मांग को असीम सत्य का ही एक अंग मानते थे। स्वाधीनता उनके लिए एक अत्यधिक पवित्र वस्तु थी। उनका विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात स्वराज तीव्र संघर्ष और कष्ट सहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 31। उन्होंने राज्यभक्ति में हस्तक्षेप नामक अपने एक लेख में कहा कि ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष का प्रसार करना भारतीयों का धर्म है। गांधी ने तिलक के इस कथन को हृदय में स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए स्वराज प्राप्ति उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश करने से पूर्व भारत की स्थिति। जब 1915 ईस्वी में गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोखले के परामर्श के अनुसार 2 वर्षों तक सक्रिय राजनीति से दूर रहकर भारत की वास्तविक स्थिति का साक्षात अध्ययन करते रहे। युद्ध के कारण विदेश से आयात बंद हो गया और भारतीय माल की मांग बढ़ गई, जिससे भारत को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। बंगाल में पटसन के कारखानों और मुंबई तथा अहमदाबाद में सूती कपड़े की मिलों ने अत्यधिक धन कमाया। विशेषकर विदेशी मिल मालिकों ने, जो भारतीय मजदूरों को गुजारे लायक मजदूरी भी देने को तैयार नहीं थे। फिर युद्ध के उपरांत मंदी आई और सरकार ने पाउंड और रुपयों के विनिमय दर को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पुनर्निर्धारित किया, जिससे साधारण जनता के लिए परिस्थितियां और भी बिगड़ गईं। विशेषकर कृषि को, मिल मजदूरों तथा शिक्षित वर्ग के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने इस समय की अंधकारमय अवस्था को इन शब्दों में व्यक्त किया है: हम एक सर्वशक्तिमान दैत्य के चंगुल में फंस गए हैं, हमारे अंग गतिहीन हो गए हैं और मन मरणशील। कृषक वर्ग पूर्ण रूप से दीन और अत्यंत भयभीत हो गया है। मिल में काम करने वाले लोग इससे अधिक अच्छी स्थिति में नहीं हैं। मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी, जो इस उमड़ते हुए अंधकार में आकाशदीप के रूप में कार्य कर रहे थे, स्वयं ही इस सर्वव्यापी अंधकार में डूब गए हैं। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुझावों से भारतीयों में घोर निराशा हुई। कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों को अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशामय माना, परंतु सरकार इसे पर्याप्त नहीं समझती थी। सरकार को यह भय हो गया कि भारतीय उद्योगपतियों में अब अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की शक्ति आ गई है। इसलिए उन्होंने श्वेत लोगों के भ्रम को दूर करने की भावना से 1919 ईस्वी में कुख्यात रॉलेट अधिनियम पारित कर दिया। यद्यपि साम्राज्यीय विधान परिषद में सभी भारतीय सदस्यों ने इसका खुलकर विरोध किया था। पृष्ठ संख्या 32। इस अधिनियम में केवल युद्धकाल में व्यक्तिगत अधिकारों पर लगे प्रतिबंधों को ही बनाए रखने का प्रावधान था, परंतु लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। इस अधिनियम से कार्यपालिका को दो विशेष अधिकार और प्राप्त हो गए, जिससे लोगों पर बिना अभियोग चलाए 2 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन राजनीतिक अभियुक्तों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जा सकते थे। गांधी से पहले के युग में कांग्रेसी आंदोलन का प्रभाव प्रायः मध्यम शहरी शिक्षित वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। कांग्रेस के साधारण सदस्य तो सिर्फ तमाशाबीन हुआ करते थे। उसके राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने, जिनका कांग्रेस पर आधिपत्य था, कांग्रेस आंदोलन को भारतीय शासन व्यवस्था की त्रुटियां बताने तथा उसमें सुधार लाने के लिए दलीलों, व्याख्यानों, प्रार्थनाओं तथा आलोचनाओं और बाद में चलकर स्वशासन की मांगों को दोहराने तक ही सीमित रखा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जन आंदोलन को अपेक्षित रूप से नहीं ग्रहण कर पाई। कांग्रेस के पीछे भारतीय जनबल की संगठित शक्ति नहीं थी। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के सत्याग्रह। गांधी ने 1917 में 1918 तक तीन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए। तीन संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जुड़े हुए थे। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों के आंदोलन थे और अहमदाबाद आंदोलन मिल मजदूरों का आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध कराया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील को बाजार से बाहर कर दिया। चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई। 1917 से 1918 के बीच इसके खिलाफ किसानों ने विरोध किया, किंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। पृष्ठ संख्या 33। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। गांधी जैसे ही चंपारण पहुँचे, कमिश्नर ने उन्हें वहाँ से तुरंत चले जाने का आदेश दिया। गांधी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इस उल्लंघन के लिए बड़े से बड़े दंड को भुगतने का फैसला किया। जनता के लिए यह एक आश्चर्यजनक कदम था। किसी के अनुचित आदेश की अवज्ञा और उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध उनके लिए वास्तव में एक अनोखी बात थी। अंततः स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा और गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई। यह गांधी की जीत थी। गांधी ने गांव-गांव घूमकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण किया और उनके बयान दर्ज किए। इसी बीच सरकार ने सारे मामलों के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी को भी इसका एक सदस्य बनाया। गांधी ने आयोग से कहा कि तीनकठिया पद्धति खत्म होनी चाहिए। किसानों से जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए उन्हें हरियाणा दिया जाए। बगान मालिक किसी तरह अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुए। एक दशक के भीतर ही गोरे बगान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। मजदूरों का तर्क था कि उन्हें बोनस के रूप में जो रकम मिल रही है वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बढ़ी हुई महंगाई की तुलना में काफ़ी कम है, अतः इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। गांधी ने मिल मालिकों और मजदूरों के इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने हड़ताल का बहाना बनाकर अपने को इससे अलग कर लिया। उन्होंने 20% बोनस की घोषणा की और यह धमकी दी कि जो मजदूर उसे स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मालिकों के व्यवहार से गांधी बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और मजदूरों की हड़ताल पर जाने को कहा। गांधी ने 35% बोनस की मांग की। शीघ्र ही मजदूरों ने हड़ताल कर दी। साबरमती के तट पर रोज मजदूरों की सभा को गांधी संबोधित करते थे। उन्होंने मजदूरों को हिंसा का रास्ता न अपनाकर अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। पृष्ठ संख्या 34। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष को और तेज करने के लिए गांधी ने खुद भी अनशन पर बैठने का फैसला कर लिया। गांधी ने यह वचन दिया कि यदि हड़ताल के कारण मजदूर भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएं, तो वे खुद भूखे रहेंगे। गांधी के अनशन का मालिकों पर व्यापक असर पड़ा और अंततः गांधी के प्रयास से मालिकों ने 35% बोनस देने का फैसला किया। खेड़ा सत्याग्रह। गांधी को बताया गया कि खेड़ा जिले के किसान बहुत मुसीबत में हैं। फसल बर्बाद हो जाने पर भी सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही है। किसान चाहते थे मालगुजारी माफ़ की जाए, परंतु सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विठल भाई पटेल और गांधी पूरी जांच पड़ताल के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसानों की मांग जायज़ है और राजस्व संहिता के तहत पूरा लगान माफ़ किया जाना चाहिए। गुजरात सभा ने इस आंदोलन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इसके अध्यक्ष थे। अपील और याचिकाओं का जब कोई असर नहीं पड़ा तो गांधी ने किसानों से लगान न देने और सरकार के दमनकारी आदेश के विरुद्ध संघर्ष करने की अपील की। वह सरकार को बता देना चाहते थे कि नागरिक के राय के बिना वह उन पर हुकूमत नहीं चला सकती। गांधी ने गांव-गांव घूमकर किसानों से अहिंसक संघर्ष की अपील की। गांधी ने किसानों का लगान न देने की शपथ दिलाई। जो किसान लगान देने की स्थिति में थे उन्हें भी ऐसा करने से मना किया। गांधी ने कहा, यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर देती है तो जो लोग लगान दे सकते हैं वे स्वेच्छा से पूरा लगान देंगे। खेड़ा के किसान संघर्ष की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वे पहले से ही प्लेग, महंगाई और सूखे की मार से त्रस्त थे। इसी बीच गांधी को पता चला कि सरकार ने अधिकारियों को गुप्त निर्देश दिया है कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में है। इस प्रकार गांधी का मकसद पूरा हो गया और आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रहों में सफलता से गांधी की लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें देश की जनता के नज़दीक आने तथा उनकी समस्याओं को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी ने भारतीय जनता के बीच अपनी अद्भुत पहचान बना ली।